रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमः। भगवान ने कल के प्रसंग में लंका में चंद्रमा को देखकर उसके अंदर जो कालिमा थी उस कालिमा को देखकर सबकी परीक्षा ली, कौन क्या बोलता है, किसके मन में क्या बसा हुआ है, उसकी भगवान ने परीक्षा ली। किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, सबसे श्रेष्ठ उत्तर हनुमान जी महाराज का रहा। हनुमान जी ने कहा कि चंद्रमा में जो श्यामता है वो आपके स्वरूप की श्यामता है महाराज, ये आपका नित्य प्रति ध्यान करता है। पवन तनय के वचन सुनकर के भगवान बड़े प्रेम से हंसे और दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए विभीषण से कहा, रे विभीषण ये क्या बात है, आकाश में कोई इतने बदल तो नहीं है लेकिन फिर भी एक तरफ ये काला काला बदल, उसमें बिजली चमक रही है और ओले गिर रहे हैं, क्या बात है, इधर से क्या है, ओले जैसे क्या गिर रहे हैं ये। विभीषण ने कहा, नहीं महाराज कोई बदल बदल नहीं है, न कोई बिजली है, तो बिजली चमक रही है ना, ये देखो ये चमकी, ये देखो काला काला बदल। कह नहीं नहीं ये लंका के ऊपर एक महल है और महल के सामने खाली जगह बड़ी सारी, वहां अखाड़ा है, अखाड़ा, उस अखाड़े में ये रावण बैठा हुआ है, यहां पर वो नाच गान करने वाले बहुत सी स्त्रियां वगैरह भी हैं, जो उनके लिए तबला बजता है, वो नाचती हैं तो तबले के ऊपर जो तड़ 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 आवाज जाती है वो ऐसे लगता है जैसे कोई ओड़ों की वर्षा हो रही हो। और ये जो काला काला दिख रहा है ये तो रावण का छत्ता है महाराज, और बिजली जो दिख रही है आपको ये मंदोदरी का कभी सिर हिलता है तो उसके कान के अंदर जो आभूषण है वो यूं 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 चमकते हैं, और कोई यहां बदल नहीं, असमय में बदल और फिर ये ओले गिरना, ऐसे थोड़ी है। भगवान ने प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, भगवान ने कहा अच्छा रावण को इतना अभिमान है, तो भगवान ने एक बाण मारा। एक बाण मारने पर रावण के दसों सिरों के ऊपर जो मुकुट थे वो एक सा सर 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 सब गिर गए, और मंदोदरी के कान के अंदर जो आभूषण थे वो भी गिर गए सबके देखते देखते, और वो बाण किसी को दिखाई नहीं, और सर जाकर के राम जी के तर्कस में आकर के बैठ गया, विराजमान हो गया। तब रावण की सभा में बड़ा भारी हड़कंप, मई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये मुकुट कैसे गिर गए, अरे महारानी के कान के आभूषण कैसे गिर गए, क्या हुआ। तो रावण ने देखा कि महारस भंग, हमारे यहां तो बड़ा आनंद हो रहा था, नाच गान का बड़ा भंग, क्या हो गया क्या हो गया। क्या महाराज कोई भूकंप नहीं आया, कोई जोर से तूफान नहीं आया, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं देखा, मुकुट कैसे गिर गए, ये तो बड़ा भारी कोई असुकून होने वाला है महाराज। अरे क्या करते, रावण अंदर से तो भयभीत था पर सभा के सामने बिना किसी अपने भय को प्रकट किए हंसते हुए जुगती बनाकर के क्या बात करते हो। सिरौ गिरे संतत सुबह जाई, मैंने कई बार सिर को काट काट करके शंकर जी के सामने रखा है, वो कितना शुभ हुआ है। सिर कटा हो तो शुभ और ये मुकुट गिर गया कि अशुभ। क्या बात करते हो आप, इतने में डर गए, क्या हो गया इससे? जाओ तुम लोगों को ज्यादा देर तक यहाँ रास में रहते रहते थकावट आ गई, तो अपने अपने घर जाओ और सो जाओ। सब गए सो जाए सोने के लिए। मंदोदरी के मन में बड़ी चिंता हुई। मंदोदरी ने अपने प्राणनाथ से सजल नेत्रों से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज कभी तो कोई बात माना करो, हमने आपको ज्यादा किसी बात के लिए नहीं कहा है, कभी आग्रह नहीं किया, एक बार आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बात मान लीजिए महाराज, आप राम जी से विरोध करना छोड़ दीजिए। आपके दिल में ये जो बात बैठ ही गई ना कि राम तो एक मनुष्य है, ये केवल आपका हट ही है और कुछ नहीं है, इस हट को आप छोड़ दीजिए और मेरी कही हुई बात को ठीक ढंग से सुनिए। ये विश्व का जो कुछ स्वरूप आप देखते हैं साक्षात भगवान है। भगवान के इस स्वरूप के अंदर कल्पना है हमारी कि ये वृक्ष है, ये मकान है, ये दरी है, ये स्टेज है, ये माइक है, ये बोलने वाला है, सुनने वाला है, केवल भगवान के अंदर कल्पना है। जितने लोग परलोक दिखते हैं सब कल्पना है। पाताल कोई तो पाताल है, वो क्या है? भगवान का चरण है। भगवान के चरण को लोग पाताल बोलने लग गए, भगवान के सिर को ब्रह्मलोक बोलने लग गए। ऐसे अलग 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 लोक हैं, वो भगवान के शरीर में विराजमान है और उनकी ये काल क्या है, उनकी भौंरे ये यूं यूं होती रहती हैं, ये दिन रात ये काल है। सूर्य उनका नेत्र है, काले काले मेघ है ये उनके बाल हैं, सिर के बाल हैं, और अश्विनी कुमार है उनकी नासिका है, रात और दिन ये निमेश है, और दसों दिशाएं हैं वो उनके कान हैं, ये जो सांग सांग करती हुई वायु चलती है ये भगवान श्वास ले रहे हैं, ये उनका श्वास समझना चाहिए। लोगों की जो लोभ वृत्ति है वो नीचे का होट, ये लोभ है लोभ। देखो किसी आदमी को कोई चीज की इच्छा होती है लोग ऐसे करता है, ये लोभ ये हिलता है। और माया क्या है, उनका हंसना ही माया है। देखो हंसी एक ऐसी चीज होती है कि मनुष्य उसमें कितनी बात छिपा लेता है, माया हास पता नहीं चलता ना, हंसने से अंदर के क्रोध का भी पता नहीं चलता। इसीलिए शास्त्र में आता है हसन्नपि नृपो हंती, राजा का कुछ पता नहीं वो हंसते हंसते किसी को फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि हंसी में कुछ भाव का पता नहीं चलता है। तो ये हंसी क्या है, ऐसी भगवान की माया है, ये हंसना है ये भगवान की माया, इसमें कुछ पता नहीं चलता। रोम राज अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा, ये पर्वत है ये भगवान की हड्डियां हैं, नदियां ये भगवान की नसें हैं, और ये रोम राजी है ये बाल वगैरह है, ये सब वृक्ष है, वृक्ष भगवान ये वृक्ष है, ये भगवान की रोमराजिया है। ऐसे शिव है वो भगवान का अहंकार है, ब्रह्मा है वो भगवान की बुद्धि है, मन है वो चंद्रमा है वो भगवान का मन है, और ये महत्तत्व है ये भगवान का चित्त है, सारा रूप भगवान का है। ऐसे भगवान को ऐसे भगवान से प्रेम को छोड़ करके और आप ये बैर बांधे हुए हो, हे महाराज कितना उल्टा काम हो रहा है, इसलिए अभी भी समय है, आप इस बैर को हटाओ और राम जी के चरणों में प्रीति करो ताकि मेरा भी ये सुहाग बना रहे। मंदोदरी ने सारे शास्त्रों की सार बात कही, परंतु रावण के मन में बड़ा अभिमान, कहने लगा ओ हो तुम्हारा मोह तो बहुत ज्यादा बढ़ गया मंदोदरी। देखो स्त्री के स्वभाव में 8 अवगुण रहा करते हैं। देखो कई कई लोग आक्षेप करते हैं कि रामायण में स्त्रियों की बड़ी निंदा की गई है। क्यों? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, एक बात। अच्छा दूसरी, क्या अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं? स्त्री के हृदय में 8 अवगुण रहते हैं और 8 अवगुण कभी मिटते ही नहीं है। ऐसे सीधा गोस्वामी जी ने लिखा है, रामायण में लिखा है, चौपाई है साहब। पर ये तो देखो कि रामायण में ये चौपाई किसने कही है? ये रावण ने कही है। तो रावण के वचन आदर्श नहीं होते। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि जो स्त्रियों के अंदर अवगुण देखा करते हैं उसकी बुद्धि रावण जैसी होती है, ये बताने के लिए कहा है। रावण का हल्कापन बताया है ये कह करके। पूरी पुस्तक पढ़ी जाए, कौन बोलता है, क्या प्रसंग है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये समुद्र बोलता है, और किस प्रसंग में बोलता है ये पता ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक बार मैं सरदार शहर गया, वहां पर मुझे स्कूल में जाने का काम पड़ा, तो एक महिला ने खड़ा होकर के प्रश्न किया, महाराज हमारा एक प्रश्न है, बोलो भाई। ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी स्त्रियों का बड़ा भारी अपमान गोस्वामी जी ने किया, और आप गोस्वामी जी का बड़ा आदर करते हैं, करते हैं भाई। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये बहुत अनुचित है, हमारे मन में खटकता है। तो महाराज जी ने कहा कि आपके यहाँ रामायण है क्या? कि रामायण तो है, तो ठीक है लाओ भाई। कि रामायण के ये बताओ चौपाई कहाँ की? ये तो अयोध्या कांड की है, ये चौपाई अयोध्या कांड की है। महाराज जी ने कहा अच्छा अयोध्या कांड में कहाँ की है? जहां स्त्रियों का प्रसंग आता है वहां की है। तब कहा कि देखो इस पुस्तक को तुम पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद प्रश्न करो। ऐसे बिना पूछे कर दिया कि हमने तुम्हारा सुना सुना है लोगों से, तो फिर सुना है पुस्तक पढ़ा तो नहीं कि अयोध्या कांड की है ही नहीं। अयोध्या कांड में स्त्रियों का प्रसंग ही नहीं है, बोलो ये किसी भी कांड में स्त्रियों के प्रसंग में नहीं आई है चौपाई। ऐसे ही ये कह रहे हैं अवगुण 8 सदा उड़ रहे ही, 8 अवगुण तो स्त्रियों में रहते ही हैं। नारी स्वभाव सत्य सब कहे। देखो मंदोदरी, स्त्री के स्वभाव में ये 8 अवगुण रहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है और सब कहते हैं। अरे बोलने वाला कौन है? कि रावण है। रावण कैसी स्त्री को बोल रहा है? जो मंदोदरी जैसी परम ज्ञानवती भक्तिवती स्त्री है। ये मंदोदरी का भगवान ने बहुत आदर किया है, और मंदोदरी ने भगवान का भी बहुत आदर किया है। रावण का शरीर मरा हुआ पड़ा है, भगवान पास में खड़े हैं। उसने रावण को प्रणाम करके भगवान को प्रणाम किया कि महाराज इनकी करतूत के हिसाब से देखा जाए तो इनको तो महान नरक मिलना चाहिए, लेकिन आपकी कृपा से ये परम धाम पधारे हैं। इतनी बड़ी स्तुति कहने वाली मंदोदरी, उसको गोस्वामी जी महाराज कह देंगे कि तुम्हारे अंदर 8 अवगुण है। ये रावण बोलता है, वो कहता है स्त्री मात्र में 8 अवगुण तुम्हारे में भी है। तो क्या? साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच और अदाया। एक तो हर काम का साहस कर बैठती हैं, एक झूठ बोलती हैं, एक चंचलता बहुत होती है, चाहे जैसी बोल देती हैं, एक इनके अंदर माया कपट छिराव भी बहुत होता है, भय है, अविवेक है, बुद्धि से काम नहीं लेती, अशौच पवित्रता नहीं रखती, और अदाया और मौके पर ये दया को भी छोड़ देती है। ये तुम्हारे अंदर सदा से अवगुण रहते ही है मंदोदरी। अच्छा अच्छा अब मुझे तुम्हारी चतुराई का ज्ञान पड़ा मालूम दिया। ओहो तुमने जो शत्रु की महिमा गाई है ना, ये तुमने शत्रु की महिमा नहीं गाई है, यही भी दिखाऊ मोरी प्रभुता, ये तुमने मेरी बड़ाई की है। अरे अरे मंदोदरी तुम बहुत बुद्धिमती हो, तुम्हारी बात कौन समझ सके? ये तो मैं हूं जो तुम्हारी बात समझ गया। तब बतका ही गुड़ मृग लोचनी, तुम्हारी बात तो बहुत गूढ़ है, बड़ी रहस्यमय है, यदि उसको समुदत सुखद सुनत भय मोचनी, तेरा वास्तविक बात का अर्थ समझे तो भय समाप्त हो जाए। अब पता चला है मुझे, ओहो मंदोदरी ने तो हाथ जोड़ दिए और मन में सोचने के फूट गए, इतनी देर बात कही और उल्टा ये सारी बड़ाई अपने में ही मान ली गई। अब मेरा पति तो काल के वशीभूत हो गया, इतना सिखाया तब भी रावण माना नहीं, और वो सभा में जाकर बैठ गया। इधर राम जी महाराज हैं, एक बात गोस्वामी जी बहुत अच्छी बीच में कह रहे हैं कि फूलई फराई न बेत जदपि सुधा बरस ही जलद। एक बैत का पेड़ होता है सुकट, उसको कितना ही आप अमृत के समान पानी पिला दो, अमृत ही बरसा दो भले ही, तो भी वो कभी फलीभूत नहीं होगा। ऐसे ही मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। अंदर मूर्खता भरी पड़ी है, उसको ब्रह्मा जी मिल जाए समझाने के लिए तो भी उसको समझा नहीं सकते हैं। तो रावण के हृदय के अंदर मूर्खता भरी पड़ी है, अब मंदोदरी कितनी समझा सकती है। ये तो है रावण की बात। इधर राम जी की बात सुनो, ये क्या राम जी प्रातःकाल उठे, सबको इकट्ठा किया, बोलो भाई देखो लंका में आ गए हैं, अब बताओ क्या करना चाहिए, आप लोगों की सलाह क्या है। राम जी तो सलाह लेकर के काम करते हैं और रावण को उचित सलाह दी जाती है उसको भी वो ठुकरा देता है। जामवंत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज क्यों हमको पूछ करके आप हमको शर्मिंदा करते हो, आप सब जानते हो, सबके हृदय में रहने वाले हो, आप बुद्धि के बल के तेज के धर्म के गुण के खजाने हो महाराज, लेकिन आपने हमसे पूछा है तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार कि आपको पहले दूत भेजना चाहिए, इसमें आपका बड़प्पन लगेगा, संसार कहेगा कि देखो सबल राम जी ने भी युद्ध न हो इसके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा, इसलिए आपको शांति दूत के लिए किसी को भेजना चाहिए। तो किसको भेजे बताओ। हनुमान को दोबारा नहीं भेजना चाहिए, क्यों कि महाराज हनुमान जाएंगे तो वो सोचेंगे कि एक हनुमान ही है इनके यहां और कोई नहीं है, तो किसको भेजे, सुग्रीव को भेजे, ना 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 सुग्रीव तो महाराज ये तो हमारा राजा है, राजा दूत का काम नहीं किया करते, तो किसको भेजे भाई, अंगद को भेजो, क्यों अंगद को भेजना ठीक रहेगा, बड़ा बुद्धिमान है। हाँ ये बात ठीक है, अंगद को भगवान ने बुलाया। देखो कई के लोग इसमें अर्थ लगाते हैं कि अंगद को क्यों भेजा, यहां पर बैठे हुए कौन थे, हनुमान जी थे, अंगद जी थे, लक्ष्मण जी को भेजते कि नहीं, लक्ष्मण जी को नहीं भेजना चाहिए, क्या पता कैद खाने में डाल ले, और कहते हैं कि या तो लक्ष्मण को ले और या सीता को ले, तब क्या करोगे, न तो सीता का त्याग कर सकते न लक्ष्मण का त्याग कर सकते, क्या करें। सब बैठे हुए थे, उसमें अंगद का क्यों भेजा, अंगद को इसलिए भेजा कि अंगद के बाप को तो राम जी ने मार ही दिया, अंगद एक बहुत बड़ी सेना का सेनापति भी था, अंगद की परीक्षा करनी थी कि अंगद के अंदर भगवान की कितनी भक्ति है, ये दुनिया को बतानी है कि भक्ति हो भगवान में तो ऐसी होनी चाहिए, इसके पिता को मारा है फिर भी इसके मन में भगवान के प्रति कोई बैर भाव नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई छद्म नहीं है, ये अंगद की भक्ति को बताने के लिए। तो अंगद को भगवान ने बुला करके और कहा कि ए बाली कुमार, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा बल तुम्हारा गुण मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा काम है विशेष काम, तुमको लंका में जाना होगा, ज्यादा तुमको क्या कहूं, जैसा समय आए जैसी परिस्थिति आए वैसे तुम जाकर के काम करो और मैं तुमको बहुत चतुर मानता हूँ। बस एक ही बात पर लक्ष्य रहना चाहिए कि कार्य हमारा हो, क्योंकि हमारा कार्य नीति संगत है, धर्म संगत है, पर रावण का भी अहित नहीं होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए। ऐसी जाकर के आपको बातें करनी है। रिपुसन करे वो बतके ही सोई, ध्यान से सुनना, भगवान ने कहा है कि उसके साथ में जाकर ऐसी बातें करना, बस हनुमान जी की तरह से कोई लंका उनका जलाना वलाना ये मत करना, केवल बातें करना, बस उसको समझा देना, नया काम मत करना कुछ भी। अंगद जी ने प्रणाम किया और अंगद जी कहने लगे, महाराज जिसके ऊपर आप कृपा कर लेते हो वही गुणों का सागर हो जाता है। आपके काम तो महाराज बने बनाए हैं, आप तो हमको आदर देने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कहकर के युवराज अंगद वहां से प्रस्थान करे। अंगद जी महाराज लंका में गए। लंका में जाते ही सबसे पहले पुर पैठत रावण कर बेटा, प्रवेश करते ही रावण का बेटा मिल गया। वहां खूब खेल रहा था, जवान बेटा खेल रहा था, हंसी खेली कर रहा था, तो बंदर को देखा, अरे ये कौन आया यार, यूं देखने लगा। अंगद जी महाराज अपनी मजे, ए कौन हो, कैसे जा रहे हो उधर? अंगद ने कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं है, तुम जबरदस्ती हमसे क्यों माथापोड़ी करते हो भाई? या नहीं नहीं, हमारे से बिना पूछे आगे नहीं जा सकते। ऐसे करके दोनों के बात कुछ बढ़ गई, दोनों ही जवान, दोनों ही बराबर बल वाले। उसने अंगद के एक लात मारी, तेई अंगद कहूं लात उठाई, लात मारने के लिए पैर यूं किया, अंगद जी ने वो पैर ही पकड़ लिया, पैर पकड़ करके उसको ऊपर उठाया और खूब जोर से घुमाया, घुमा करके धड़ाम से वहां पर पटक दिया, तो जितने निशाचर थे सब इधर उधर भाग गए। कोई और अंगद जी देखे वो चुप चुप हो गए। एक एक सन मरमन कहे, वो निशाचर इतने डर गए अंगद जी के बल से कि एक दूसरे को कहा भी नहीं कुछ भी, चुपचाप गए ऐसे, समुझी तासुबद चुप कर वो उसके वध के हो जाने बाद सब चुपचाप पड़े, मर गया तो मर गया, कहीं हमारी तरफ नहीं आ जाए। नगर के अंदर धीरे धीरे आगे आगे कोलाहल बढ़ता गया, लोगों ने कहा अरे वही बंदर आ गया जिसने लंका को जलाया है, अब क्या करे, अब क्या करे भाई, पड़े रहो अपने जो जहां है वहीं पर पड़े रहो। अब अंगद जी जो ही जाते हैं यूं तो वो निशाचर क्या करते हैं, मार दे इधर चले, अब हमारी तरफ मत आ जाना, यूं जाओ यूं यूं बिन पूछे मगुदे ही दिखाई, जय बिलो की सोई जाय सुखाई। इसके दो अर्थ हैं। अंगद जी महाराज जिसको यूं देखते हैं ना, यूं टेढ़े टेढ़े सोड़े क्रोध में आकर के वो वहीं सूख जाता है, करता है सोई जाए सुखाई। और अंगद जी महाराज इसको प्रेम से देख लेते हैं, अच्छा अच्छा जाओ, तो वो सुखी हो जाता है, अरे बाबा हमारी जान बच गई, जय विलो की सोई जाए सुखाई। सभा में चले गए, सभा में जाने लगे तो सिंह ठावनी, जैसे सिंह चलता है दहाड़ता हुआ, ऐसे निर्भय होकर के अंगद जी महाराज रावण की सभा के वहां पहुंचे। सभा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक निशाचर को कहा, जाओ रावण को सूचना दो हम राम की सेना के दूत बने हुए, उनसे कुछ विचार करने के लिए आए, गंभीरता से बोला। रावण ने कहा, अच्छा कोई बंदर आया है हमसे बात करने के लिए? हाँ महाराज, बुलाओ उसको। तो बुलाने के लिए भेजा तो कई दूत गए, एक दूत ने कहा अकेले से पार नहीं पड़ेगी, मैं अकेला जाऊंगा, क्या पता, वो तो दृष्टि ऐसी खारी दृष्टि उसकी। तो आए सुपाए दूत बहु आए, बहुत से दूत आए एक साथ, यू एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहे, असाब आपको अंदर, आप अंदर पधारिए, अंदर पधारिए। गए अंदर, रावण जब वहां देखी, वहां विचित्र बात है, अंगद ने जाकर रावण को देखा, देखने पर ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ा भारी काजल का पर्वत है वो सांस ले रहा है, काजल का पर्वत सांस ले रहा। का सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे, और उसकी भुजा है वृक्ष के समान, और सिर है ऐसे जैसे कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे ऊंचे, और मुख और नासिका, मुख है नाक है ये कान है, ये है जैसे कोई पर्वत के अंदर गुफाएं होती हैं बड़ी बड़ी, ऐसा जो देखा उसको। अब देखिए वहां गए ना बाली कुमार, तो गयु सभा मन नेकुन मुरा, मुरा माने झिझक ना, कोई झिझक गए हो, इतना बड़ा वैभव है कि इतना इसका देह बल है कि इतना इसका ऐश्वर्य है कि क्या, कुछ नहीं। परंतु एक बात सबसे बड़ी विचित्र हुई कि जो ही बाली तनय ने सभा में प्रवेश किया, सब सभासद अपने आसन से खड़े हो गए, उसका तेज ही ऐसा था। रावण को ये बात बहुत बुरी लगी, अरे क्या आप लोग इसके आने से खड़े होते हो। उठे सभासद कपिकौ देखी रावण उर्भा क्रोध विशेषी, विशेष क्रोध आया कि ऐसा कौन सा बड़ा पुरुष आ गया भाई, आप लोग इसके सामने ऐसे क्या खड़े होते हो। ये रावण को बहुत बुरा लगा, प्रकट में तो कुछ कहा नहीं, मतलब खड़े हो गए उसके तेज के सामने। जथा मत तगज जूथ महू पंचानन चली जाय, जैसे कोई हाथियों का झुंड हो और उसमें सिंह यूं मस्ती से जाता हो, ऐसे ही भगवान के प्रताप का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए उसने, सभा का कायदा होता है सभा को हाथ जोड़ना और फिर बैठ जाना, बैठ गए सर। रावण ने कहा बंदर कहां से आए हो, मैं रघुवीर का दूत हूं, मेरे बाप के साथ तुम्हारी मित्रता रही है, तुम्हारे हित के लिए कुछ बात करने के लिए आया हूं। उत्तम कुल में तुमने जन्म लिया है, पुलस्त्य के तुम पौत्र हो, तुमने शिव जी की और ब्रह्मा जी की अनेक बार पूजाएं की है, उनसे वरदान भी प्राप्त किया है, इसका इस कारण से तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है और तुम्हारे अंदर मोह भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका परिणाम कि भगवान की पत्नी सीता, जगदम्बा सीता का तुमने हरण किया है, ये तो तुम्हारे पाप हैं। अब इस पाप के प्रायश्चित का फल तुमको बताता हूं, प्रायश्चित का तरीका बताता हूं। जीवन में तुमने बहुत पाप किया, अब शुभ कहा, अब शुभ कर्म क्या है वो बताता हूं तुमको कि तुम यहां से भगवान के पास जाओ, मुंह के अंदर एक तिनका रख लो, तिनका दसन गया हूं तिन कंठ कुठारी, गले के अंदर एक कुल्हाड़ी रख दो, कुल्हाड़ी गले में बांधो, कुल्हाड़ी क्यों, जाकर के उनके सामने कहो कि महाराज क्षमा नहीं करो, मुझे दंड दे तो कुल्हाड़ी रही, मेरा सिर काट दो, मैं तो तिनका लिए मतलब आपकी गाय हूं। कोई आदमी किसी के सामने क्षमा न करे, क्षमा मांगने पर क्षमा न करे तो कहते हैं उसको गौ हत्या का पाप लगता है, मैंने कोई गलती कर दी आपकी और आपका अपराध कर लिया और मैंने आपसे क्षमा मांगी हृदय से, और आपने यदि क्षमा नहीं किया तो भाई उस समय आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो दसन गया हूं तृण और कंठ कुठारी, यदि क्षमा नहीं करो तो महाराज ये रहा गले के अंदर, मेरे ही गले के अंदर ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से गला काट दो, अकेले मत जाना, तुम्हारे सब परिवार के लोगों को ले जाना, अपनी स्त्रियों को भी साथ में ले जाना, उन सब के सामने जाकर के तुम क्षमा याचना करोगे, सीता जी को साथ में ले जाओगे तो उस समय में भगवान कृपा दृष्टि से तुम्हारे पूरे परिवार पर यूं दृष्टि डालकर सबका कल्याण कर देंगे, तत्काल कल्याण कर देंगे, क्योंकि अकेले जाओगे तो अकेले जाने पर तुम्हारे परिवार के लोग या दूसरे लोग यहां वापिस आने पर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन सब जाएंगे राम जी का स्वरूप स्वभाव देखेंगे, सब कहेंगे ये काम तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी सारी लंका का भला हो जाएगा। और जब तुम आर्त होकर के त्राहिमाम करेंगे तो भगवान ने कहा बस 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 तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुमको अभय दान देता हूं। रावण का बंदर कहां बोल रहा है, ये किष्किंधा नहीं है, ये बंदरों की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है, ये बात यहां ठीक नहीं बैठेगी, हमको यहां मूर्ख बनाने के लिए आया है। तेरे बाप का नाम बताया नहीं, उससे पहले ही कह दिया कि तेरे बाप के मेरे बाप के साथ तुम्हारी मित्रता थी, किसका बेटा है तू, कौन तेरे बाप का नाम है, किस कारण से हमारे तुम्हारे बाप की और हमारे साथ मित्रता बताते हो, सारा संसार सारा ब्रह्मांड हमारे सामने कंपित होता है और तेरा बाप मेरा मित्र बनेगा, मेरा मित्र कौन है, तेरा बाप क्या नाम है, तेरे बाप का तुम्हारा नाम क्या है, अंगद नाम बालिकर बेटा तासों कबहू भई ही भेटा, मेरा नाम तो अंगद है, मेरे बाप का नाम बाली है, जानते हो कभी उससे भेंट हुई, एक बोलने का तरीका यो आंख से आंख, कभी उससे भेंट हुई हो, अंगद वचन सुनत सकुचाना, अरे बाली का बेटा है, बाली से तो काम पड़ा हुआ है, मन में संकोच आ गया, हाँ 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 एक बाली था किष्किंधा का, एक बानर जानता हूं मैं उसको, अरे अंगद तू उस बाली का बेटा है, ओहो तभी तुझे क्षमा कर रहा हूं अंगद, बाली का बेटा उस वंश के अंदर तू पैदा हुआ है, इतने बढ़िया वंश में, और उसी वंश को अब तू नष्ट करने जा रहा है, तू अपने वंश में आग पैदा हो गया, तू गर्भ में आया ही क्यों, और आ गया तो तू बीच में ही क्यों नहीं खत्म हो गया, तूने व्यर्थ ही जन्म लिया है, अपने मुंह से तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती है कि मैं एक दुर्बल और दीनहीन तपस्वी का दूत हूं, कहते हुए तुझे शर्म ही नहीं आती, बाली का तो बेटा होकर के ऐसी बात करता है, बाली से मिलके आया कि नहीं, बाली से मिल गया तो बाली ने क्या तुमको ये कहा कि जाओ तुम रावण से ऐसा कहो, कहां है बाली, बाली की क्या हालचाल है, अंगद कहा मैं क्या बताऊं बाली के हालचाल, रावण जी बाली के हालचाल तो आप ही 10 दिन के बाद पूछ लीजिएगा कि भगवान से विरोध करने पर क्या हुआ करता है, वो आपको खूब अच्छी तरह से समझा के कहेंगे, अरे मूर्ख रावण ऐसी भेद की बातें मत करो, तुम राम जी से विरोध कराना चाहते हो मेरा, जिसके जिसके हृदय में राम जी का प्रेम नहीं बैठ होता वही राम जी से विरोध में चलता है, मेरे हृदय में भगवान का प्रेम है, और हमको तुमने कुल घालक कहा, कुल का नाश करने वाला कहा, और तुम कुल के पालक बन गए, रावण मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई मामूली अंधा आदमी और बैरा आदमी भी ऐसी ऊटपटांग नहीं बोलता, तुझे तो भगवान ने 20 कान दिए हैं और 20 ही आंख दी है, फिर भी तू ठीक ढंग से सुनता नहीं है, ठीक ढंग से देखता नहीं है, माने मंदोदरी के वचन तुझे 1000 कानों से सुनने चाहिए थे, 20 कान से तू सुन नहीं पाया, और इतनी विशाल सेना यहां आई, तुझे महल के ऊपर चढ़ करके ये सेना देखनी चाहिए थी, नयन कान तब भी इस व्यर्थ में तेरे नेत्र है, व्यर्थ में तेरे कान है, एक बार तू बार बार कहता है, शिव विरंचीसुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई, मैंने शिव जी की पूजा की है, अरे शिव जी किन की पूजा करते हैं ये तो समझ, और ब्रह्मा जी किसकी पूजा करते हैं ये तो समझ, शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी पूजा करते रहते हैं मैं उनका दूत हूं, ऐसे उम्मति और विहरन तोरा, ऐसी बात कहते हुए क्या तुझे शर्म नहीं आती है, मेरे मन में कोई ऐसा फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, कठोर वाणी सुनकर के और दशानन कहने लगा, अरे दुष्ट तेरी बातें सुन सुन करके मेरे मन में तो नीति और धर्म की बातें पैदा हो रही, नहीं तो तुझे जिंदा ही नहीं रहने दूं, पर क्या करूं मेरे अंदर धर्म वृत्ति पैदा हो रही है, धर्म कहता है दूध को मारना नहीं चाहिए, मेरे अंदर धार्मिक भावना पैदा हो गई, मैं क्या करूं, तुझे मार नहीं चाहिए, तुझे तो मारना चाहिए, अंगद अच्छा तुम्हारे अंदर धर्म धर्म की वृत्ति पैदा हो गई, ओ हो तुम तो भाई बड़े विचित्र धर्मात्मा हो, हमने तो सुना है कि तुमने दूसरे की स्त्री की चोरी करी है, ये धर्मशीलता से हुई है क्या? और देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। तुम्हारी 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 बहन को नाक कान से रहित कर दिया, फिर भी तुमने शायद क्षमा कर दिया होगा, धर्म विचार करके क्षमा कर दिया होगा। ओहो, तुम्हारी धर्मशीलता तब जगी तो हो, हमारा भी बड़ा भाग्य कि ऐसे धर्मात्मा पुरुष के आज हम दर्शन कर रहे हैं। रावण, हमारा भाग्य जग गया। रावण कहता, अरे तू ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोलता है हमारे सामने, ये देख मेरी भुजाओं का बल देख, लोकपाल तो मेरे यहाँ कांपते रहते हैं। और मेरी भुजा तो क्या है, ये मेरी भुजा लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। मेरी भुजा तो राहु के समान है, बड़े बड़े लोकपाल चंद्रमा के समान है, ग्रस लेते हैं उनको। मेरा जो ये आकाश है ये तो है तालाब, और मेरा हाथ है ये कमल, और उसके ऊपर कैलाश पर्वत है वो है हंस के समान। देख तो सही कितना मेरे में बल है। ऐसा है कोई तुम्हारे सेना में? तुम्हारी सेना में ऐसा कोई नहीं है। ए अंगद सुन, मेरे से कौन लड़ सकता है? तुम जिसको सबसे बड़ा मानते हो उसकी तो स्त्री हमने हर ली, आते वो तो बलहीन हो गया, तो रोते 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 बेचारा सूख गया। उसका बेटा है जो उसका जो भाई है वो उसके दुख में दुखी हो गया, लक्ष्मण उसके दुख में दुखी है, भाई के दुख में दुखी है। और सुग्रीव और तुम जो अपने कुल का नहीं हो सकता वो किसका हो सकता है? तुम दोनों बेकार आदमी हो, कुछ ही काम के नहीं हो। हमारा भाई विभीषण बड़ा डरपोक, वो तुमको क्या सलाह देगा, वो कैसे लड़ेगा? जामवंत है वो बड़ा बूढ़ा हो गया, वो थोड़ी लड़ सकता है। नल और नील है ये केवल कारीगरी का काम जानते हैं, आगे कुछ करते नहीं है। तुम्हारी सारी सेना में एक है योद्धा बस, कौन? वही जो पहले यहां आया था, हमारे नगर को जला दिया था। अरे रावण, क्या तुम्हारा नगर जल गया था? सत्य बात है ये कि झूठी बात है? लंका को जला दिया किसने? जो पहले आया था ना तुम्हारा बंदर, उसने जला दिया। अब रावण का मुंह नीचा हो गया है, पहले जो आया था ना उसने हमारी लंका को जला दिया। तो साचे वो किस कीनपुर दाह, अरे सचमुच तुम्हारा नगर जल गया? तुम्हारे नगर को, रावण के नगर को, ओहो त्रिभुवन जयी रावण के नगर को एक छोटे से बंदर ने जला दिया? साबत निकल गया, बिना मारे आपने उसको छोड़ दिया, इसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? अरे रावण, जिसको तू इतना बड़ा मानता है वो तो सुग्रीव का एक मामूली सी चपरासी है, छोटा मोटा काम करने वाला। ये इधर सामान ले आओ, ये इधर ऐसा गाओ, ये तो दूतों का काम, ये तो सामान्य आदमी को सामान्यता का काम दिया था उसको। भाई वो समुद्र लांग लिया तो क्या हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारा नगर जला दिया, उसको इतना दुख हो रहा, अभी तक तो वापिस आया ही नहीं है वो, सुग्रीव को मुंह दिखाने नहीं आया कि क्या करूं, सुग्रीव जी मुझे क्या कहेंगे। वो तई भय रहा लुकाए, वो भय से कहीं लुका हुआ है। अब लोग कहेंगे कि भाई अंगद जी झूठ क्यों बोले, ये तो अंगद जी को देखो, आखिर भगवान के दूत है, अब भगवान के आदमी तो सच बोले, रावण तो झूठ सांस सब चलता है, कम से कम अंगद जी को तो सत्य बोलना चाहिए। अंगद जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि अभी तक आया नहीं? अंगद जी कोई मामूली थोड़ा ही है। पर देखो इस समय अंगद जी दूत हैं, दूत का ये काम होता है कि भगवान ने आज्ञा भी दी, और दूत का ये काम होता है कि अपने मालिक के काम के लिए वो अगले राजा को, अगले शत्रु को सब प्रकार से डराए, धमकाए, दबाए, सब काम करवाए। ये दूत का कर्तव्य होता है। भगवान ने भी कह दिया कि रिपुसन करई बतक ही सोई, जिससे हमारा काम हो और उसका हित हो ऐसी बात करना। ये नहीं कहा है कि तुम सच्ची सच्ची बात करना, ये नहीं कहा, यही कहा है कि जिससे उसका हित हो और अपना काम हो, इस ढंग से बात बोलना। अरे रावण क्या बताएं, हमारे यहां तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्यों? तेरे साथ लड़े कौन बता, तेरे साथ जो लड़ेगा उसका संसार में अपयश होगा। जो मृगपति बद मेडुकनी, एक सिंह है वो मेंढक को उठा के मार दे तो सिंह की बड़ाई है कि सिंह की निंदा है? अरे क्या किया, एक मेंढक को पकड़ के मारा। अब क्या करें, राम जी तेरे को मारे तो राम जी की महिमा घट जाएगी। यद्यपि लघुता राम कहूं तो ही बधे बड़ दोष। क्या बताएं तुझे, यदि राम जी मारते हैं तो राम जी की लघुता ही है, और मारे तो दोष भी लगेगा, लघुता भी है और दोष भी है। तुझे छोड़े तो भी दोष लगेगा। परंतु एक बात है, राम जी के अंदर क्षत्रिय जाति का जब रोष प्रकट होगा तो वो छोड़ेंगे तो नहीं तुझे। ऐसी ऐसी वक्र उक्ति के बाण उसके शरीर में लगने लगे रावण के, और रावण क्या करने लगा, उत्तर प्रति उत्तर प्रति उत्तर सड़सिन मनऊ, सड़सिन माने सड़सी कहते संडासी, बाण खूब लग जाए तो संडासी ले लेकर के निकाले। ऐसे ही वक्र उक्ति के बाण लगे उसके रावण के मन में, तो वो टेढ़े टेढ़े बोल के द्वारा उन बाणों को वापस निकालते हुए बोलने लगा, ए ए बंदर, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है भाई। क्यों? तुम जिसके यहां रहते हो और जो तुमको पालता है उसका हर प्रकार से तुम उपाय हित करते रहते हो, ये तुम्हारी विशेषता है। वाह भाई, हे बंदर, तुम अपने स्वामी के लिए नाचने में नाचते थे, दुनिया के सामने नाचने लग जाते हो, तुमको लाज नहीं आती? नाच कूद कर लोग रिझाई, पतित करई धर्म निपुनाई, उनके लिए तुम सब कुछ करने के लिए थे। बंदर को नचाते हैं मदारी लोग, उनका पेट पालते हैं और वो तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम स्वामी भक्त तो हो। देखा ना मैंने तुम्हारे अंदर कितना गुण है, वो गुण पकड़ लिया, क्योंकि हमारे स्वभाव में गुणग्राहिता है। हम शत्रु के अंदर भी गुण देखने वाले हैं, और उसी गुणग्राहिता के कारण से तब कटु रटनी करो नहीं काना। तुम हमको बहुत कटु वचन बोलते हो, हम कान में नहीं डालते, ऐसे बोलते हैं, ये तो बंदर है। अच्छा तुम गुणगाहक हो, हमको हनुमान जी ने बताया था, हनुमान जी ने बताया था तुम्हारी कितनी गुणग्राहकता है। वन विध्वंसी, जिन्होंने जिन हनुमान जी ने तुम्हारा जंगल उजाड़ा, जिन हनुमान जी ने तुम्हारे बेटे को मारा, जिन हनुमान जी ने तुम्हारी लंका में आग लगाई, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा, फिर भी आपने कोई अपकार नहीं माना। अरे रावण हनुमान ने हमारा कुछ बिगाड़ कर दिया, ऐसे तुम्हारे मन में भाव ही नहीं आए। ओहो हो, कितनी गुणग्राहकता है आपकी। और मैं भी सिकंदर तेरे से इतनी बातें कर रहा हूं, ये भी बात ठीक है। तुमने कहा ना तुमको लाज शर्म नहीं आती, वास्तव में मुझे भी लाज शर्म नहीं आती है, तेरे जैसे से मैं बात कर रहा हूं। ओहो, मुझे लाज आनी चाहिए कि तेरे से क्या बात करूं, तेरा तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। और भाई क्या बताऊं, बाल विमल दस भाजन जानी। अरे रावण क्रुद्ध हो गया, मैं ऐसी बात बोलता, बाली के पुत्र होकर के मेरे साथ ऐसी वाणी बोलने का, तू बाली का बेटा है ना, तो अभी तुझे मार देता। अरे तू है कौन, मुझे तो तेरा पता ही नहीं है कि तू कौन सा रावण है, ये तो बता। एक तो रावण वो है कि जो बलि को जीतने के लिए नीचे पताल में गया था और वहां घुड़साल में उसको बांध दिया, और बलि के बेटों ने उसको खूब अच्छी तरह से बांध करके सूड़ सूड़ करके उसको मारा, यो बांध दिया और मारा, वो रावण है क्या तू? या सहस्रार्जुन ने, सहस्रार्जुन ने तुमको पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया था, फिर ऋषि पुलस्त ने तुमको छुड़ाया था, वो रावण हो क्या? यही वही रावण है वो क्या? एक रावण और सुना, मुझे लाज आती है कुछ कहते हुए। क्यों? एक कहत मोई सकुच अति रहा बालिकी काक, इन महु रावण ते कवना सत्य बदई तजिमाक। देखो भाई खींचना नहीं, तुम सच्ची सच्ची बता देना, एक रावण के विषय में कहते हो तो मुझे लाज आती है कि वो बाली की कांख के अंदर भी रहा था। बाली एक बार दक्षिण तट के ऊपर समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, उसी समय में रावण आया लंका में जाने के लिए। ये कौन है यार आगे आया हुआ इतना विशाल बंदर? रावण आया और उसे जाके मुक्का धक्का लगाने लगा कि इधर कैसे खड़े हो, कौन होता है सूर्य, कैसे सूर्य को अर्घ्य दे सकते हो, मेरे यहां मेरे राज्य में सूर्य को अर्घ्य देते हो? सूर्य तो मेरा नौकर है, मेरा सेवक है, मैं इसका स्वामी हूं। वो बेचारे मंत्र बोल रहे थे, अब मंत्र बोले बीच में लड़े झगड़े तो अच्छा नहीं लगे, फिर वो धक्का ले गए, कुछ नहीं बिगड़े उनके महाराज, बलि के कुछ बाली जी के कुछ भी न बिगड़े, फिर भी वो धक्का मुक्का करने लगा तो बाली ने उठा करके उसको अपनी खाक में दबा लिया और अर्घ्य दे करके, और फिर बाली खूब ऊंचे आकाश में उड़ गए और कहा कि रावण अब तुझे छोड़ता हूं मैं। अरे रे नहीं 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 अब नहीं अब नहीं, तो आइंदे ऐसा कभी किसी की पूजा पाठ में बाधा डालोगे? क्या नहीं, अब आइंदे किसी की भी पूजा पाठ में बाधा नहीं डालेंगे। कभी किष्किंधा की तरफ आंख निकाल करके देखोगे कि बाबा किष्किंधा की और लंका की सदा सदा की मित्रता रहेगी। तब बाली ने उसको उतार दिया तो कहा एक कह तुम्हारी सकुच आती, बहुत संकोच है आप बाली की काख में रहे, हमको पता नहीं था कि वो इनमें से आप कौन से रावण हो, ये प्रश्न किया। अब रावण इनका उत्तर आगे देंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय
सीतावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
पवन सुत हनुमान की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा की
जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
भक्तवत्सल भगवान की
जय
आनंद कंद भगवान की
जय